ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीसुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो अखिलसाधुसम्मतः बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुले क्षणो भक्त्युत्कलो गदया गिरा ब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब परम पुरातन नित्य भगवान सर्वत्र मान्य शुद्ध भक्त एवं महात्मा बली महाराज से इस प्रकार बोल चुके, तो बली महाराज ने आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर तथा भक्ति भाव के कारण लड़खड़ाती वाणी से इस प्रकार कहा, पीछे बोलिए, श्री बलिर्वाच अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमा प्रपन्न भक्तार्थिविदो समाहिता जल्लोकपालैस्तदनुग्रहो मरेयम् अलब्धपूर्वे पसदे सुरेर्पितः श्री बलिरुवाच अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थिपितो समाहिता जल्लोकपालैस्तदनुग्रहो मरेय प्रलब्धपूर्वे पसदे सुरार्पिता श्री बलिर्वाच अहो प्रणामाय कृता समुद्यमा प्रपन्न भक्तार्थिविदो समाहिता जल्लोकपालैस्तदनुग्रहो मरेय लरब्धपूर्वे पसदे सुरार्पितः। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, श्री बलिर्वाच बलि महाराज ने कहा, अहो ओ प्रणामाय अपना सादर नमस्कार अर्पित करने के लिए कृतः मैंने किया समुद्यमा केवल एक प्रयास प्रपन्न भक्त अर्थविधो शुद्ध भक्तों द्वारा माने जाने वाले विधि विधानों में समाहित समर्थ हैं जत जो लोकपाली विभिन्न लोगों के प्रधानों द्वारा अलब्धपूर्व सॉरी त्वत अनुग्रह आपकी अहेतुकी कृपा से अमरे देवताओं द्वारा अलब्ध पूर्वः इसकी पूर्व प्रयास से अपसदे मुझ जैसे पतितों पर असुरे असुर वंश वाले अर्पित अर्पित। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। बड़ी महाराज ने कहा आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में भी कैसे अद्भुत प्रभाव है। मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का प्रयास मात्र ही किया था, किंतु वह प्रयास शुद्ध भक्तों की प्रयास के समान सफल सिद्ध हुआ। आपने पतित असुर पर जो अहेतु की कृपा प्रदर्शित की है वह देवताओं या लोकपाल को भी कभी प्राप्त नहीं हुई है। तात्पर्य, जब बामन देव बलि महाराज के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने बामन देव को तुरंत सादर नमस्कार करना चाहा, किंतु शुक्राचार्य एवं अन्य असुर संगियों की उपस्थिति के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन भगवान इतनी दयालु हैं कि यद्यपि बलि महाराज वास्तव में नमस्कार नहीं कर पाए, केवल मन में ऐसा करने की प्रयास किया, किंतु भगवान ने उन पर इतनी कृपा दिखला दी जितने की देवताओं भी कभी आशा नहीं कर सकते थे। जैसा कि भगवद गीता 2:40 में पुष्टि हुई है, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस पद पर थोड़ी से भी प्रगति से मनुष्य की रक्षा अत्यंत घातक भय से भी हो सकती है। भगवान भावग्राही है, ध्यान रखें, भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं, क्योंकि वे भक्त के भाव का सार मात्र ग्रहण कर लेते हैं। यदि भक्त निष्ठापूर्वक शरणागत बनता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान इसे तुरंत समझ जाते हैं। इस प्रकार भले ही कोई भक्त ऊपर से पूर्ण सेवा न करे, किंतु यदि वह अंतकरण में व अंतकरण से निष्ठावान एवं गंभीर होता है तो भगवान उसकी सेवा का स्वागत करते हैं। इस तरह भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की भक्तिमयी प्रवृत्ति के सार को ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद इसको कहते हैं लेजी इंटेलिजेंट। बाहर से लेजी है लेकिन अंदर से इंटेलिजेंट है, भाव उसकी बहुत अच्छा है, शुद्ध। तो ये जो बड़ी महाराज की प्रसंग है हमारे भक्ति की उत्कर्षता है। तो जो सर्वोच्च भक्ति है वह क्या है? समर्पण। और भक्ति की शुरुआत श्रवण से होता है और समर्पण में उस अंग की समाप्त होती है। तो इसलिए जो द्वादश महाजन इस भक्ति मार्ग के आविष्कार किए हैं, इस द्वादश महाजन में बड़ी महाराज ये समर्पण भक्ति को दिखलाए, क्योंकि भक्ति के रहस्य ऐसे महाजन लोग ही जानते हैं। द्वादश एतेर बिजानितम धर्मम भागवतम गुह्यम। इसकी जो सीक्रेट है वो कौन जानते हैं? इन महाजन जानते हैं। तो बलि ने किस भाव से समर्पण किया और भगवान उस बलि के साथ कैसे व्यवहार किए, हम भक्तों के लिए शिक्षणीय है। तो समझना चाहिए कि भक्ति कैसे होती है, क्या है, कैसे भाव बढ़ाना चाहिए। भगवान यही कह रहे हैं, क्योंकि वहां भी हमारी साधना की कमाई है। जंग जंग व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कले परम तंग तमा एति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। साधना की वास्तविक कमाई है ये भाव है, और जो साधक मिश्रित भाव से भक्ति करता है तो भगवान उनकी दूषित भाव को व मिश्रित भाव को नष्ट करते हैं। नाशयामी आत्म भावस्त ज्ञान दीपेना भास्वता। ये दृष्टांत है बड़ी महाराज। हालांकि प्रह्लाद जी की पौत्र है परंतु अभिमान था। किससे अभिमान था? ऐश्वर्य जी का अभिमान था कि मैं इतना बड़ा धनवान हूं, मैं इतना बड़ा दानी हूं, ये अभिमान था। भगवान इस अभिमान को नष्ट करने के, हरने के लिए भगवान कहते हैं भक्तों की अभिमान को हरना ही मेरा एक अनुग्रह है, कृपा है। जस्याहम अनुग्रहामि हरिसे तद्धनासने। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं, पहला क्या करता हूं, जिससे उनके अभिमान उत्पन्न हुआ है, जिस धन से, जिस जो मान उत्पन्न हुआ है, स्तंभ उत्पन्न हुआ है, उसको मैं पहले हर लेता हूं। ये मेरी फर्स्ट इंप्रेशन है, ये मेरी मर्सी है, कृपा है। और जब भगवान तीन पक भूमि की छल पर बलि को बांध दिए, ब्रह्मा जी कहे अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं, आपको जो तुलसी दल थोड़े से जल अर्पित कर देता है, आप अपने आत्मा को भी अर्पित कर देते हैं, आप अपने को बेच देते हैं, और बलि ने सब कुछ दे दिया, अपने सर भी झुका दिया, आप उनके सर पर पैर भी रख दिए, फिर इसको वरुण फोस में बांध रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी बहुत अच्छी बात है, आप वेद पढ़ लेते हो, तपस्या भी करते हो, ध्यान भी करते हो, ज्ञान भी है आपके पास, परंतु मेरी भक्त के साथ व्यवहार को इस ज्ञान ध्यान वेद अध्ययन तपस्या से नहीं समझा जा सकता है। ना हम वेदे न तपसा न दाने न चज्जया सक्यं एवं विधं दृष्टो दृष्टवानसि मां यथा। अर्जुन के ये कहते वेद पढ़ने से नहीं समझ पाओगे, तपस्या करने से नहीं समझ पाओगे, फिर क्यों भाई हम तप करें, क्यों भाई जप करें, जिसे नहीं समझा जा सकता। वही है, मैं जब उस आपकी तपस्या से व्रत से प्रसन्न हो जाता हूं, मैं क्या देता हूं, ददामी बुद्धि जो जैनमांग उपजानती, तब फिर समझ पाओ। कोरी ज्ञान अभ्यास से वा स्वतंत्रता से ज्ञान अभ्यास करके, स्वतंत्र रूप से तपस्या करके, इस प्रकार कोई भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी जब रियलाइज किए कि वास्तविक ये भगवान की कपटता नहीं है, छल नहीं है, बलि के साथ बेईमानी नहीं किए, भक्तो प्रियो जदसी कल्प तरु स्वभाव, भगवान के डिजायर ट्री है, सभी भक्तों की भाव को पूर्ति करते हैं। भगवान एक्सप्लेन किए, ब्रह्मा जी को कहे कि कभी कभी मनुष्य शरीर को प्राप्त करके धन से, अपने अच्छी कर्म से, रूप से, ज्ञान से, अच्छी कुल से जन्म लेकर की इस प्रकार उपलब्धियों को प्राप्त करके जब हमारे मन में स्तंभ व घमंड मिथ्या अहंकार बढ़ जाता है तो उस अहंकार को मैं नष्ट करता हूं। परंतु जिनके पास ये होने पर भी सुंदरता धन मान जवानी अच्छे परिवार में खानदानी परिवार में जन्म लेने पर भी जिनकी अंदर घमंड नहीं है, धन्यता भरी हुई है, सरल है, तो क्या समझना चाहिए कि मैं उन पर विशेष कृपा की। जन्म कर्म वयोरूपम विद्यै ऐश्वर्य धनादि भी जदस्यं न भवेत् स्तंभ तत्रायम मात अनुग्रह, उसमें ही मेरी अनुग्रह है। और मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं पहले इसकी भाव को नष्ट कर देता हूं जिसमें स्तंभ उत्पन्न होता है। विशेष करके जहां तक धन रहता है, धन के विचार है, तो प्रभुपाद पुरंजन उपाख्यान में लिखे हैं कि तुरंत ये धन के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर मिथ्या अहंकार इकट्ठा हो जाता है, बैंक बैलेंस काला धन इकट्ठा होता है और व्यक्ति उसके प्रभाव में आ जाता है, रजोगुण बढ़ता है, सबको वो नीचा दिखाना चाहता है, सबको छोटा समझता है और किसी को भी सम्मान देना नहीं चाहता है। भगवान कहते इसी प्रकार वो व्यक्ति पतित हो जाता है, अंधकों में गिर जाता है। परंतु ये देखिए बलि ने ये सब कुछ लुटा दिया, हालांकि मैं उनके साथ छल किया, बैना बनकर के आया और मांगा तीन पग भूमि और सब कुछ लूट लिया, फिर भी ये बलि देखो वो इतना ईमानदार है, इतना सत्यनिष्ठ है, अपने वचन से मुकारा नहीं। उनकी परिवार वाले भी गाली दिए, धिक्कार है, हाँ बड़ा धनी दिखा रहे हो। गुरु ने भी कहे अरे तुम नरक जाओगी, तुम जानते नहीं हो ये विष्णु है, ये छाल करके ऐसे रूप बना करके आया है देवता के स्वार्थ साधन करने के लिए, सब कुछ छीन लेगा बेटा, मत दो, तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, धंधा पानी बंद हो जाएगा, अरे मत दो। फिर भी बलि नहीं सुना, परिवार वाले भी गाली दे दिए, गुरुजी भी गाली दिए, सगे संबंधी भी सब छोड़ कर गए, क्योंकि जब धन चल जाता है सारे संबंध खत्म हो जाता है। तथा अधनम स्वजनं अस्य त्यजंती दुखा दुखिता, जिस पर भगवान अनुग्रह करते हैं तो उनके बैड एसोसिएशन को तोड़ देते हैं, क्योंकि झूठे संबंध सब इकट्ठा करके रखे हैं हमारे मन में, मोह उत्पन्न करके सब बैठा है, कोई नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब धन खत्म हो जाएगा ना, आप देखो कि सच्चे संबंधी है कि झूठे संबंधी है पता चलेगा। जब बस संपत्ति के समय है, चाणक्य जी कहते हैं कि सब संबंध इकट्ठा हो जाते हैं, सब संबंध जोड़ जाते हैं, रिश्ता जोड़ जाता है, और जब धन खत्म हो जाएगा सब छोड़ देंगे। इसलिए रियली बांधव क्या है, कौन है, आपत्ति के समय क्या है, राजद्वारे स्मशाने च, एक श्लोक था मैं भूल गया पढ़ाई के समय था, राजद्वार स्मशान से सब बांधव वो वास्तविक बल। देखो बलि आज इसी प्रकार सैक्रिफाइस करके अपने सगे संबंधी की मान ने अपमान को सुनते हुए भी, गुरु की साप को सहन करते हुए भी, और मैं अरे छाल की वो जानता है कि भगवान विष्णु आए हैं छल करके, बैना बन करके, फिर भी बलि ने कहा मैं दूंगा ही, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं, इसलिए मुंह नहीं मुड़ा। अजौ सीदजायं मायं सदन्नपि नमोह्यति। भगवान छल करते हैं, परंतु भक्तों को कभी कपट नहीं करना चाहिए। वो तो छलिया है, टेढ़े होकर ही खड़े हैं ना, उनकी स्वभाव है टेढ़ा है वो हमेशा, लेकिन हमारी बलदाव जी बहुत अच्छे हैं, सीधा साधा है, वो कपट नहीं करते हैं। भगवान बहुत प्लान बनाते हैं, है ना, जरासंध को मारने के लिए कपट बेस बना करके गए, ब्राह्मण बेस बना करके, हाँ कपट कर दिए। और उस समय भी महाभारत युद्ध में कहे कि मैं तो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, चलो आप तो संन्यास ले लिए, तीर्थ यात्रा करो, मैं तो सिर्फ अर्जुन का रथ हांकूंगा और कुछ करूंगा नहीं भैया, हाथ पे कुछ नहीं लूंगा। देखो सब काम कर दिए, सुदर्शन चक्र धारण करे, सब खत्म कर, विश्व रूप दिखा करके कहे अर्जुन तुम डरो मत, मैं इसे भाई के सामने बोल दिया था ना कि उठाऊंगा नहीं, पर तो अभी देख लिए ना, ये सारे दुष्टों को एक एक करके खत्म करूंगा, देखे ना मेरे मुंह में, हाँ डरना नहीं है, काम में करूंगा, तुम केवल बैठे रहो निमित्त मात्रम भजो सत्य साथ, डरो मत करूंगा काम। लेकिन भाई को समझाने के लिए कि मैं किसके पक्ष में नहीं हूं इसे समझा दी, बड़ा छलिया है, लेकिन बलराम जी सादा सीधा है, अरे तुम भी जो भी कर अपने ससुर के लिए, देखो उसको मार दिए, सत्राजीत के लिए सत्रधनों को मार दिए, मणि तो नहीं है, तुम बड़ा कपटी हो, भक्तों को भेज दिए अक्रूर के हाथ में मणि लेकर, तुम जानते हो झूठे इसको मार दिए। कहते भैया मुझे तो पता नहीं था, पत्नी ने मुझे फोन करके बताया कि सत्रधनों ने मर्डर किया है पिताजी का, मैं क्या करूं, घर गृहस्थी को तो संभालना पड़ता है ना। भगवान ऐसे कह दिया, बलराम नाराज होकर तुम जो भी करना है करो, मैं अभी जनकपुर जाता हूं, वहां चल के कि मैं वही तीर्थ में रहूंगा, तुम बड़ा कपटी। भगवान छल करते हैं, परंतु भक्त छल नहीं करना चाहिए, यही शिक्षा है। छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत वामनम, परंतु क्या हुआ परिणाम देखिए, छल किए भगवान और स्वयं भगवान क्या हो गए, बलि के अधीन हो गए, बलि को तो बांधे लेकिन बाद में क्या कहे, बलि देखो तुम्हारी भक्ति से मैं इतनी प्रसन्न हूं, जाओ तुम उस सुतोल लोक में जाओ, एसम में प्रापितं स्थानं दुष्प्राप्तं अमरं अपि, अरे देवता लोग को ये स्थान नहीं मिलता है, सुतोल लोक इतनी ऐश्वर्य से भरी हुई है, इतनी सुख की आवास और निवास है, रेसिडेंस है, देवता लोग भी चाह करते हैं, मैं तुमको अफर कर दिया जाओ। और उतना नहीं, फिर तुमको सावन्य मनोन्तर में मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा, डरो मत, और जब तक तुम सुतोल लोक में रहोगी अपने परिवार वालों के साथ, संबंधियों के साथ, तब तक मैं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़ा रहूंगा। भगवान लक्ष्मण कहे कितनी इंश्योरेंस, कहते ताबत सुतल मध्यस्थाम विश्वकर्मा विनिर्मितम जदाध्यायम व्याधस्तस्यं क्लमस्तात्रम पराभव। और वहां तुम्हारी कोई बाल बंका नहीं कर सकता है। एक बार आया था रावण, बस भगवान ने एक ऐसे मार दिए, ठुकार दिए अंगुली में, बस रावण कई जोजन तक हाँ दूर में जाकर के पड़ा। भगवान इज प्रोटेक्टर, अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भगवान के अंदर कितनी भाव है, ये भाव को ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति भी नहीं समझ पाए, भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि यदि आपको कष्ट से छुटकारा लेना है, पाना है, तो मेरी आश्रय में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। जरा मरण मुख्याय मामाश्रिता जतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अधात्मं कर्म चाखिलं। कर्म बंधन कट जाता है। लेकिन ये बलि ने सब कुछ देख करके शरण में गया और भगवान उल्टा उसको बांधे, कहते मैं तुमको कर्म बंधन से छुड़ा देता हूं। डुप्लीसिटी करने वाले हमेशा ही अधीन में हो जाते हैं, चीटर। बलराम भी इसलिए भगवान को डांटे, मैं तुमको कितनी बार बोला हूं तुम झूठ मत बोलो। हाँ, माखन खाए के आया, मना कर दो नहीं खाया, मिट्टी खाया फिर मना किए नहीं खाया, अभी बांध गए तो मैं क्या करूं, अभी रो रहे तो मैं क्या करूं, अभी पिटाई खाए तो मैं क्या करूं। लो तो सुने, कभी कपटी है। पहले तो गुस्सा आ गया था लेकिन बाद में रियलाइज हुआ ये अपने कर्म फल भोगता है, जैसे करनी ऐसे वर्ण। तुम बोल दिए हैं कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फल ऐसे कदाचन, लेकिन भोग कर्म की फल भोग, क्योंकि ये भगवान की वास्तविक बड़ापन है, भक्तों की अधीन रहना। अहं भक्त पराध, भक्तों को बढ़ाई देना चाहते, अपना निंदा सहन करे, अपना पण भाड़ में जाए। आप सोचिए, काल में प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था 1.11 का, वो कह रहे कि दो ऑप्शन था। भीष्म देव जो प्रतिज्ञा किए, देखो काल तुम्हारे मित्र मरेगा नहीं तो तुम्हारे प्रतिज्ञा छूटेगा, चुन लो जनार्दन क्या करना है। तुम्हारा सखा मरेगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं काल मारूंगा ही इसको, नहीं तो तुम्हारा जो प्राण है, प्रतिज्ञा है, उसको मैं तोड़ूंगा। क्या चाहते हो? भगवान कह के भाड़ में जाए मेरी प्रतिज्ञा। न मे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। छोड़, ये था उनकी प्रतिज्ञा। लोग उसकी निंदा करे, तिरस्कार करे, भगवान उसको शांत कर लेंगे, लेकिन भक्तों को रक्षा करना इनका यह प्राइमरी ड्यूटी। इसलिए बलि को बांधे, सुतल में रख दिए और कहे कि बलि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर दिया, मुझे माफ करना। इतनी नम्रता से भगवान कह रहे हैं, परंतु डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अपने संबंधियों की साथ शांतिपूर्वक रहो और तुम्हारा कल्याण हो। मैं सदैव तुम्हारी साथ रहूंगा और तुम्हारे संगियों तथा साथ सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करूंगा, साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख सकोगे। कोई जरूरत नहीं है गाड़ी लेके आओ कि मंगल आरती में खड़े रहो कि मैं तुमको दर्शन देने के लिए जाऊंगा। हाँ, मंगल आरती अटेंड करना तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हूं। ये देखिए, तो ये बात को सुनकर के बड़ी महाराज के अंदर इतना भक्ति की भाव, भक्ति उत्कलया गदगदया गीरा ब्रबीत, उनकी वाणी लड़खड़ाने लगा। हरे भाई मैं क्या किया, मैं भक्ति क्या, ना मैं मंगल आरती गया हूं, ना सोलह वाला जप किया हूं, ना एकादशी किया हूं, कुछ भी व्रत तप है नहीं, केवल भगवान आए थे ब्राह्मण बनकर के, मैं ब्राह्मण को मेरी पितामह ने रेस्पेक्ट करते थे, इस कारण से मैं जगह से खड़ा हो गया था, मैं प्रणाम नहीं किया। प्रणामाय कृतस्य मध्यमा, सिर्फ प्रणाम करने के लिए प्रयास मात्र किया, क्योंकि सामने है गुरुजी, डांटेगी, अरे तुम मुझे प्रणाम न करके वांछा कल्पना करके उसको कर रहे हो, मैं सीनियर हूं, वो बहना है, पहले मुझे करना चाहिए, इस प्रकार कुछ रहता है भाव। कहते मैं गुरु जी के भय से नहीं कर पाया, परंतु भाव तो था। प्रणमाय कृता समुद्यम, अंतर में तो भाव उत्पन्न हो गया था, परंतु प्रभु आप मुझे क्या दिए? वो फल दे दिए जो शरणागत भक्त सब कुछ अर्पित करके, प्रपन्न भक्तार्थी विधो समाहिता, बहुत अंतर से भरा हुआ भाव से, जैसे आपकी पूजा अर्चना करते हैं, चरण संवाहन आदि करते हैं, कपटता से नहीं, कुछ भक्त कपटता से करते, जैसे दुर्योधन आदि माला पहना दो, माइक्रोफोन में उसको ग्लोरीफाई कर दो और बाद में उसको 50 गाली दो पीछे से। लेकिन शुद्ध भक्त का ऐसे भाव नहीं रहता। तो शुद्ध भाव जो भक्त होता है सरल भाव से आता है, जैसे हनुमान है, विभीषण है, ये सुपर्णखा वहां रावण जैसे कपटी बन करके नहीं आते हैं, अपने वेश बदल करके सर भगवान इसलिए इनको रक्षा की और इनको संघार के नाक कान काट के छोड़ दिया, नाक कट गया। अरे तुमको कौन बोला था नाटक करने के लिए? हाँ, सुंदरी वन की कैद। कहते शुद्ध भक्त इस प्रकार छल नहीं करता है। जब आए विभीषण, सब भक्त से स्टेटमेंट लिए, क्या आपकी ओपिनियन बताओ, इनको हमारे दल में शामिल किया जाए? सुग्रीव ने मना कर दिया, अरे शत्रु की भाई है कि हमारे साथ देगा। लक्ष्मण भी गुस्सा हो गए, जांबवान भी गुस्सा हो गए, नहीं नहीं प्रभु उसको मत हटाओ, ये हमारी सब गोपनीयता को खोल देगा, ओपन कर देगा। परंतु हनुमान ने कहा प्रभु आप तो स्वतंत्र हैं, आप जैसे चाहे ऐसे करें। तो भगवान तुरंत बोले सकृते प्रपन्ना तब स्मीति जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् मम कृत। मैं पौन कर चुका हूं, जो एक बार भी मुझे कह दे प्रभु मैं आज आपके शरण में आ गया हूं, उसी समय मैं उनको सारे भय से मुक्त कर देता हूं और अपना मान लेता हूं। कितनी बड़ी है ना उसी भाव है भगवान के प्रपन्न, वो जानते हैं कौन निष्कपट है कौन सरल है, क्योंकि भावक राही छनाता। तो ये कहें कि देखो सचमुच जो प्रेमी भक्त होता है ना, वो कभी भी अपने को एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, मैं बहुत कर दिया, इतना बड़ा मंदिर बना दिया, इतनी कलेक्शन किया, ये क्या इतनी भक्तों बनाया, कभी नहीं बोलता है। वास्तविक जिसके हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हुआ है उसके लक्षण चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं प्रेम रस भाव जहां प्रेम रस संबंध सही माने कृष्ण नहीं प्रेम गंध। मेरे कृष्ण में रस मात्र भी प्रेम नहीं है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले प्रेम, परंतु ये प्रेम के संबंध क्या है, ये प्रेम के लक्षण क्या है, दैन्यता अकिंचन, इससे भगवान ही बन जाते हैं। नमा किंचन वित्ताय निवृत गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मुक्तिदाता भगवान मुकुंद इसी प्रकार उनकी अकिंचनता से दैन्यता से बन जाते हैं। वो कहता कि मेरी लेस मात्र भी सही माने कृष्ण नाही प्रेम गंध। बड़ी महाराज क्या कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने के केवल प्रयास किया, प्रणाम भी नहीं किया था। आप गीता में चार विधि कहते हैं मनमना भव मत भक्त मज्जा जी मांग नमस्कुरु, मैं लास्ट जो विधि है, लास्ट जो ऑप्शन दिए हैं, जो स्टार्टिंग में होता है, उसमें प्रयास मात्र किया, दंडवत नहीं किया, हे कृष्ण करुणा सिंधु को करके प्रणाम भी नहीं किया, मन मन से संकल्प किया था। लेकिन उसी प्रयास से आप इतनी प्रसन्न हो गए, मुझे ऐसे स्थान दे दिए जो कि बड़े बड़े देवताओं के भी लब्ध नहीं है। और उतना क्या है ना, जल्लोक पाणे स्तनो ग्रहो मरे, बड़े बड़े लोकपाल दीखपाल अमर मतरफ देवताओं की भी ये स्थिति प्राप्त नहीं हुआ है। अलुप्त पूर्वी अपसत सुरेर पिता, इससे प्राप्त नहीं हुआ। तो बड़ी महाराज क्यों ऐसे बोले, क्योंकि उनके मन में भक्ति की जो तरंगे हैं, भक्ति उत्कलया महानुभाव, इतनी भाव भरी हुई थी। इसलिए प्रभुपाद संस्था खोलते समय यही थी कि हमारी पर्पज यही होना चाहिए, क्या कृष्णा भावनामृत, भाव को बढ़ाना। ड्रामाबाज बहुत समय तक नहीं चलता है। आप देखिए, हम बहुत कुछ चमत्कारी दिखा सकते हैं, है ना, मैं ये किया वो किया, परंतु यदि भाव शुद्ध नहीं है, भक्ति में टिक पाना बहुत कठिन है। शारीरिक वाचसिक तपस्या कर सकते हैं, लेकिन मानसिक तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, भाव संशुद्धिर एतत् तप मानस उच्यते, भाव की संशुद्धि चाहिए, ई असली तप है। सभी में प्यूरिफिकेशन आवश्यक है। पानी गंदा होने पर हम पीते नहीं है, भाव गंदा होने पर कभी कोई रेसिप्रोकेशन नहीं करेगा। अब कितनी फ्लैटरिंग करते रहिए, कितना पलटिस कीजिए, परंतु भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो सकते, ना कभी आपकी आत्मा को प्रसन्नता मिल सकती है। जय आत्मा सुप्रसिद्ध, कौन सी भक्ति से भगवान खुश हो जाते हैं, आत्मा प्रसन्न हो जाता है, ये भक्ति समर्पण, कोई कपट नहीं करना, सरल भाव से समर्पण। इसलिए तो भगवान कहें कि अभी ये असुर और सुर के द्वारा सम्मत है, महानुभाव खिड़ साधु सम्मत। पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं कि बड़े की इस प्रकार समर्पण को देख करके, उनकी सरलता को देख करके असुर लोग भी ताली बजाए, वाह क्या बलि कमाल कर दिए हो। साधु लोग ने कहा, अरे ये असुर कुल में जन्म लिया, बलि ने इसे किया, धन्यवाद साधु साधु साधु। साधु लोग ने रिकमेंड कर दिया। अभी भी प्रहलाद जी की चरित्र, जहां इष्ट गोष्ठी होता है, बड़े बड़े संत लोग बैठ जाते हैं, चर्चा करते हैं, पहले प्रहलाद के नाम आता, उसके बाद बलि महाराज के नाम आता, कि असुर कुल में भी ऐसे प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, भक्तमाल में भी उनकी गाथा गाई जाती है, बृहत भागवतामृत में भी उनकी गाथा गाई जाती है, श्रीमद् भागवत में भी उनकी गाथा गाई जाती है। क्या समर्पण, यही कहे कि ऐसी स्थिति मुझे जो आप प्रदान किए प्रभु, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता, कृतज्ञ। भक्त कभी कृतज्ञ नहीं होता है। इसलिए भक्तों के साथ भी है ना, हम जो व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार रेसिप्रोकेशन करना चाहिए, थैंक्स बहुत कुछ दिए। जहां हमारे डिमांडिंग जीरो होता है, उसी समय हमारी लव एंड रेसिप्रोकेशन शुरू होता है। जहां कमांडिंग डिमांडिंग है, कंट्रोलिंग है, वहां पर लव एंड रेसिप्रोकेशन नहीं होता है। चाहे पारिवारिक जीवन में लो, सामाजिक जीवन में लो, अपने व्यक्तिगत जीवन में, कभी बलि ने डिमांड नहीं किया, कमांड नहीं किया, बल्कि थैंक्स दिए। भगवान ने छल किए, बांध दिए, सूत्र लोग भेज दिए, सब हैरान हो गए। प्रहलाद जी समझ गए बहुत अच्छा, पत्नी भी समझ गई विंध्यावलि, है ना, बहुत अच्छा किए, इनका घमंड भी दूर किए। इसी प्रकार जो भक्ति की जो थोड़ा भाव है, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य प्रायते महत्वभयात्। महत्वभय क्या है? पुनर्बार फिर भौतिक शरीर को प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा भय, क्योंकि जन्म मृत्यु से वहीं से शुरू होती है। इसलिए भगवान के माया को पार करना बहुत कठिन है, मोह माया दुरत्यया, परंतु भक्त आसानी से पार कर जाता है। मैं एक छोटे मैं 2-3 मिनट समय लूंगा कि माया को कैसे भक्त पार करते हैं भक्ति के द्वारा। तो एक बार नारद जी, एक उपनिषद में कथा है कि मन में भ्रम हुआ कि माया सच है कि झूठ है। यदि माया सच है न झूठ है तो फिर क्यों दिखाई पड़ता है? और माया यदि सत्य है फिर क्यों मिट जाता है? संशय हुआ माया के स्वरूप जानने के। तो भगवान के पास गए। नारद जी कहे, रुकिए रुकिए जनार्दन, आपसे एक जिज्ञासा है। भगवान कह रहे, तद्विति प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। फिर प्रणाम नहीं किए, प्रश्न पूछते। नारद जी कहे कि ठीक है, प्रणाम कर लिया हूं, बताओ आपका जो माया जो गीता में कहे को दुरत्यया, क्या है माया? मुझे समझ में नहीं आ रहा, यही प्रश्न उठे। अरे बता दो। कहते नारद जी, आप तो कीर्तन करने में व्यस्त हैं, आप क्यों माया के विषय में जानना चाहते हैं? छोड़ दो ये चक्कर, कीर्तन करो, भजन करो, माया के चक्कर छोड़ दो। कहते नहीं नहीं प्रभु, मुझे भी ज्ञान देना होता है, प्राचीन भरी जैसे बड़े बड़े राजाओं को ज्ञान दे करके उनको उद्धार करना होता है, आप बताइए माया। तो भगवान कहते, अच्छा तुम समझना है, चलो मेरे साथ। तो भगवान उसको लेके गए। कहाँ पर लेके गए? एकदम सूखा बालू डेजर्ट। और नारद जी नंगे पैर में थे, कोई चप्पल सूट बूट तो नहीं था, उसका पैर पूरा जलने लगा। अरे प्रभु और नहीं चल पाऊंगा, और नहीं चल पाऊंगा, बहुत प्यास लग रहा है। भगवान कहते, अच्छा ठीक है आ जाओ, एक पेड़ के नीचे बैठे। कहते प्रभु अभी तो बता दो, बहुत हो गया तपस्या, अभी बता। अर्जुन ने बाण उतार दिया, तुम उनको ज्ञान दे दिए, मुझे तो दे दो। भगवान कहे, अच्छा तुम ज्ञान लेना चाहते हो, मुझे बहुत प्यास लगा है, तुम थोड़ा पानी लेके आओ, सेवा करो, परिप्रश्न न सेवया, सेवा करो तो ज्ञान मिलेगा ना। नारद जी कहे ठीक है, जा रहा। नारद जी देखे, अरे मरुभूमि में कहाँ पानी मिलेगा, ढूंढते ढूंढते गए, ओ बहुत दूर में एक कुआं मिल गया। वहां देखे 2-3 लड़कियां पानी भर रहे थे, उनको भी बहुत प्यास लगा था। तो नारद जी कहे, अरे मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो लड़कियां, ठीक है आ जाओ महात्मा जी, बैठ जाइए। तो पानी पिला, और नारद जी पानी पीते पीते उनका मन लटक गया उधर, भूल गए कि भगवान मुझे भी भेजे थे पानी लाने के लिए। पहले पानी पी लिए, पहले भोग की, अभी मन हुआ उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। तो जाकर कि एक जहां पर वो लड़की रहती थी वहां पहुंच के वहां देखा तो बहुत बड़ा महल है। तो राजकुमारी जाकर बताया कि देखो महात्मा जी को हम पानी पिलाए और हमारे पीछे पड़ गए। तो राजा आए नारद जी के पास, पूछे देवर्षि मैं क्या सेवा करूं, आज मेरे महल में पधार कर धन्य करते घर बताए। नारद जी कहे कि देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच बात मन की बात बता देता हूँ, मुझे शादी करने की इच्छा है और आपकी लड़की से करूंगा। राजा कहे, अच्छा सचमुच? देखो नारद जी, आप मेरे जैसे दामाद बने की कितना बड़ा सौभाग्य है ना, कितने पुण्य मुझे मिलेगा, मेरे राज्य समृद्ध सब बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात है नारद जी, आप इधर उधर भटकते रहते हो, 3 लोग, मेरी बेटी कहाँ जाएगा इधर उधर, आपके पास ताकत सकती है, तो एक वचन दीजिए, यदि आप ये महल में रहोगे ना तब मेरे अपने बेटी आपके साथ शादी करा। नारद जी कहे, कोई बात नहीं है, इतना अच्छा महल कहाँ मिलेगा और परमानेंट रेसिडेंस है। तो नारद जी शादी कर ली, महल में रहने लगे, और कुछ दिन के बाद राजा का वियोग हो गया और राजा का कोई बेटा नहीं था, तो दामाद को बना दिए राजा। तो नाराज जी राजा बन गए, उनका 3 बेटा भी हो गया, बहुत खुश है, सब पापा पापा बोलने लगे। नाराज जी का वाह धन्य है, और बेटा को सब सिखाए, ऐसे सब राजनीति सीखो, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, दूसरे राजा के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है, सब नीति सिखाने लगे। तो इस प्रकार नारद जी भोग करते करते एक बार दूसरे राजा उस राज्य पर आक्रमण किया, तो मंत्री ने आकर संदेश दिया, महाराज नारद जी अभी शत्रु राजा हमारे पर आक्रमण कर रहे हैं। तो नारद जी कहा, अरे मैं डरपोक थोड़ी हूं, चलो। पत्नी ने वंदना कर दी, विजय भव, पत्नी ने आशीर्वाद दे दिए। लेकिन जब युद्ध भूमि में उतरे, शत्रु ने उनको परास्त कर दिया। नारद जी प्राण बचा करके भागे, बच्चों को लेकर के, पत्नी को लेकर के भागे। भागते भागते ऐसे एक स्थान में पहुंचे, देखे कि कहां पर कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा। तो पुकारने, हे भगवान, क्या मेरी भाग्य हो गया, आज मैं दर दर भिखारी बन गया, कुछ खाने पीने के नहीं। पत्नी ने कह रही, स्वामी धैर्य रखो, आप ऐसे हो जाएंगे हमारे परिवार डूब जाएगा। नारद जी कहा, मुझे एक उपाय आ गया है, हम इस नदी पार करके ना दूसरे राज्य में चल जाएंगे, वो राजा के साथ मेरी मैत्रीता था, वो मुझे निश्चित रूप से मुझे हेल्प करेगी, चलो मैं नदी पार करता। तो नारद जी नदी पार करने के लिए ढूंढे नौका, नौका तो है लेकिन चलाने वाला नहीं है। नारद जी कहे कि मैं चला के ले लूंगा, तुम लोग बैठ जाओ। पत्नी बच्चे का हाथ पकड़ कर नौका में बैठा था, लेकिन नारद जी को चलाना नहीं आता है, नौका हिलने डुलने लगा। और ऐसे बहुत गहरे नदी था, पानी बहुत जोर धारा में बह रहा था, तो बीच में सोचे कि नौका डूब जाएगा, मैं पत्नी को बचाऊं कि बच्चे को बचाऊं। तो देखे पत्नी की पकड़ रहे तो बच्चे डूब रहे, तो ऐसे हक्का बक्का होते होते नारद जी संभाल नहीं पाए, पत्नी बच्चे सब डूब गए। नारद जी को तैरना आता था, इसलिए तैर करके आगे ऊपर। लेकिन ऊपर जब आए, नारद जी सोचे क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतनी धन था, इतनी साम्राज्य था, इतना बड़ा राजा था, मेरी इतनी सुंदर पत्नी थी, 3 बच्चे हैं, सब आज्ञाकारी थे, आज क्या हो गया, रोने लगे, आज मेरी ऐसे भाग्य फूट गया है, भगवान मुझे ऐसे दशा में डाल दी। पुकारने लगे, बहुत जोर से पुकारे, हे भगवान मैं अभी क्या करूं। भगवान आकर पहुंच गए, नारद जी क्या हो गया, मेरी पानी कहाँ है, तुमको पानी लाने के लिए भेजा था, तुम पानी में डूब गए। नारद जी का, अच्छा हाँ पागे। नारद जी क्या हो गया, कितने समय बीत गया, घड़ी देखा कि कुछ नहीं है, सिर्फ 10 बीता है अभी। तो क्या था ये, इतनी मेरी पत्नी बच्चे कहाँ चल गए, अरे कुछ नहीं था, देखा तुम क्या प्रश्न पूछे, मम माया दुरतया। चलो नारद जी अब एक बिना ले लो, झोली माला उठाओ, कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, हरि प्रेमानंदे हरे हरे।